लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे चीन के कैथलिकों के लिए याचना करते हैं, ताकि कठिनाइयों के बावजूद चीन के लोग सुसमाचार में अपने विश्वास को सुदृढ़ करें तथा एकता में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने कहा है कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से लोगों में डर और अनिश्चितता गहरा रही है, इसलिए इस संकट पर पार पाने के लिए आपसी एकजुटता, आशा और राजनैतिक इच्छा शक्ति की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यों के समन्वय कार्यालय ओचा ने युद्ध व आपात स्थिति वाले क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 10 करोड़ लोगों के बारे में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि चूंकि ये आबादी संयुक्त राष्ट्र की सहायता पर ही निर्भर है, इसलिए इस आबादी पर बहुत भीषण असर पड़ने की आशंका है। भारत में 22 मार्च रविवार को एक दिन का जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, जो काफी हद तक सफल रहा। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन करने की घोषणा की। बुधवार 25 मार्च से देश की 130 करोड़ की जनता 3 हफ्तों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा, आज मध्य रात्रि से पूरा देश लॉकडाउन होगा। भारत को, भारत के हर नागरिक को, आपको, आपके परिवार को बचाने के लिए हर सड़क को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे बड़ा और प्रभावी तरीका है। कोविड-19 से जुड़ी और ताजा खबरों को आइए सुनते हैं सचिन गौर से।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को एक ऑनलाइन प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा,
We are facing a global health crisis unlike any in the 75-year history of the United Nations. People are suffering, sick and scared. A global recession, perhaps of record dimensions, is a near certainty.
UN महासचिव कह रहे थे कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से जिस तरह मानवीय पीड़ा फैली है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और लोगों के जीवन में उथल पुथल हुई है। इस तरह का वैश्विक स्वास्थ्य संकट यूएन की 75 वर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। व्यापक पैमाने पर आर्थिक मंदी करीब करीब निश्चित है। ये एक ऐसा लम्हा है जो विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं से समन्वित, निर्णायक और अभिनव नीतियों की मांग करता है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें इस साल के अंत तक विश्व भर में लोगों की आय नुकसान को $3.4 trillion आंका गया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि वो जल्द ही G20 नेताओं के साथ बैठक में इस बड़ी चुनौती से निपटने के रास्तों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी रूप से हमें लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है, सबसे निर्बल, कम वेतन पाने वाले कर्मचारी, छोटे और लघु उपक्रम, लोगों के लिए वेतन में मदद, बीमा, सामाजिक संरक्षण, दिवालिया होने की रोकथाम और रोजगार सुरक्षा अहम है। उधर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत संगठनों ने कहा है कि युद्ध क्षेत्रों और आपात स्थिति में रहने को मजबूर 10 करोड़ लोगों तक सहायता पहुंचाना जारी रखना होगा। अगर ऐसे इलाके वायरस की चपेट में आते हैं तो इसके विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों को इस बीमारी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। यूएन एजेंसी का कहना है कि इस कठिन समय में भी मानवीय राहत को जारी रखना वैश्विक एकजुटता की कार्रवाई है और सभी के हित में है। व्यापक स्तर पर तालाबंदी होने से करोड़ों बच्चे न तो स्कूल जा पा रहे हैं और न ही उन्हें स्कूलों में भोजन मिल पा रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जा रहा है, ताकि बच्चों के भोजन व पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को बताया कि चीन के वुहान शहर में कल कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जो ये आशा बंधाता है कि इस वायरस पर काबू पाना संभव है, लेकिन ढील बरतना गलत होगा और ये मानना भी कि इस बीमारी से सिर्फ उम्रदराज लोग ही प्रभावित होते हैं। यह बात युवाओं को हमेशा ध्यान में रखनी होगी ताकि वो न सिर्फ अपना बचाव करें बल्कि वृद्धजनों की सुरक्षा भी संभव हो सके। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी सहित अन्य कई देशों में अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। एहतियाती कदमों के कारण व्यापक पैमाने पर तालाबंदी हुई है, शहरों में जीवन की रफ्तार ठहर गई है। भारत सरकार ने रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने और स्वैच्छिक रूप से घर से बाहर न निकलने का आह्वान किया है। साथ ही 22 मार्च से एक सप्ताह के लिए भारत आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। यूएन के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि मानव स्वास्थ्य के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का होना जरूरी है, लेकिन यह जोखिमों व उससे बचने के तरीकों को समझने और अपने परिवार व समुदायों की रक्षा के लिए सटीक जानकारी हासिल करने पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार कानून के तहत हर सरकार का यह दायित्व है कि कोरोना वायरस के खतरे के प्रति सत्यनिष्ठ और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाए और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी न हो। पत्रकारों की रक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी में बढ़ जाती है, खासतौर पर जब सरकार की कार्रवाई पर नजर और जनता तक सूचना पहुंचाई जा रही हो। कोरोना वायरस के फैलाव पर नजर रखने के लिए कई प्रकार की निगरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन ऐसे औजारों का इस्तेमाल सीमित स्तर पर ही किया जाना चाहिए और लोगों की निजता का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे समय में जब कोविड 19 के फैलाव के कारण लोग शहरों व देशों में तालाबंदी से अपने घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर हैं, यूएन की एक विशेषज्ञ ने बेघरों की व्यथा की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए जिनके पास अपना घर नहीं है। विश्व भर में लगभग 1.8 अरब लोग आवासहीनता और अपर्याप्त आवास के हालात में रहते हैं। विशेष दूत लेलानी फरहा ने सरकारों से आग्रह किया है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ समुचित सुरक्षा मुहैया कराने के प्रयास होने चाहिए। इनमें वायरस से प्रभावित लोगों को किन्हीं कारणों से जबरन घर खाली करवाने पर रोक लगना और आवास कर्ज की अदायगी स्थगित करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एजेंसी का कहना है कि प्रवासियों और शरणार्थियों की दुनिया के कई देशों में मौजूदगी है और वे भी कोविड 19 से उसी तरह प्रभावित हुए हैं जैसे अन्य लोगों पर इस सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी का असर हुआ है। यूएन एजेंसी की ओर से सबसे अहम संदेश यही है कि लोगों के साथ गरिमा और उनके मानवाधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ व्यवहार हो, ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदल सकता। बार, थिएटर, रेस्तरां, खेलकूद आयोजन बंद होने और लोगों के घरों पर रहने से प्रवासियों की आजीविका पर असर पड़ता है, और अगर किसी प्रवासी व्यक्ति के संक्रामक बीमारी का शिकार होने की आशंका है तो उनके पास भी डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल तक पहुंचने का विकल्प होना जरूरी है, क्योंकि इसी में समाज का हित है। और यही समय विकलांगों का ध्यान रखने का भी है। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। संक्रमितों के संपर्क या बीमारी की चपेट में आने से रोकने के लिए जरूरी है कि उनके निवास के लिए समुचित ठोस प्रबंध किए जाए। बहुत से विकलांग लोग ऐसी सेवाओं पर निर्भर होते हैं जिन्हें स्थगित कर दिया गया है, और हो सकता है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन और दवाइयों के लिए धन ना हो। इसलिए विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को नाजुक हालात या गरीबी के कगार पर धकेल दिए जाने से बचाने के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना बहुत अहम है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे। तुम
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम समय अनुसार शुक्रवार संध्या 6 बजे संत पापा फ्रांसिस के साथ प्रार्थना में शामिल होकर विश्वासी रोम शहर और संपूर्ण विश्व का असाधारण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व के कैथलिकों को आमंत्रित किया गया है कि शुक्रवार संध्या 6 बजे वे संत पापा के साथ प्रार्थना में एक प्राण होवें। रविवार को देवदूत प्रार्थना के प्रसारण के समय संत पापा फ्रांसिस ने खुद इस पहल की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, मैं हर किसी को आध्यात्मिक तौर पर संचार माध्यम से प्रार्थना में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी प्रकार की प्रार्थना बुधवार को भी संचारित की गई थी, जिसमें दिन के 12 बजे विश्व के समस्त ख्रिस्तानुयायियों ने एक साथ मिलकर कोविड महामारी से उत्पन्न गंभीर वैश्विक परिस्थिति के मद्देनजर हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ किया था। वेटिकन स्थित परम धर्मपीठीय प्रेस कार्यालय के निर्देशक ने इस बात की पुष्टि की कि रोम समय अनुसार संध्या 6 बजे वेटिकन से शुक्रवार की प्रार्थना का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर रोम शहर और विश्व को दी गई आशीष प्रायश्चित संबंधी प्रेरितिक संविधान की आज्ञप्ति के अनुसार दंड मोचन से जुड़ी रहेगी। उन्होंने बताया कि संत पापा फ्रांसिस संत पेत्रुस महागिरजाघर के खाली प्रांगण के समक्ष अपनी खिड़की से प्रार्थना करेंगे तथा आशीर्वाद देंगे। निर्देशक ने बताया कि रोम समय अनुसार शाम 6 बजे से इस समारोह का सीधा प्रसारण वेटिकन मीडिया द्वारा संपूर्ण विश्व में किया जाएगा। बाद में इस समारोह को आप हमारी वेबसाइट पर कई भाषाओं में फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब चैनल प्रसारण से प्राप्त कर सकते हैं। इस असाधारण प्रार्थना समारोह के दौरान संत पेत्रुस महागिरजाघर के केंद्रीय द्वार पर संत मार्सेल गिरजाघर के सालुस पॉपुली रोमानी अर्थात रोम के लोगों के रक्षक क्रूस की प्रतिमा रखी जाएगी। बाइबल से पाठ किए जाएंगे, प्रार्थनाएं अर्पित की जाएंगी और पवित्र संस्कार की आराधना की जाएगी, जिसके बाद संत पापा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वेटिकन के संत मर्था प्रासाद के प्रार्थनालय में शुक्रवार को ख्रिस्तियाग के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने बीमारों, बुजुर्गों और उन सब लोगों के प्रति अपने विचार अभिमुख रखे जो कोविड महामारी से पीड़ित हैं तथा जिनके पास जीने की सुख सुविधा नहीं है। साथ ही उन्होंने उन लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया जो इस महामारी से उत्पन्न कठिन स्थिति में बीमारों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। शुक्रवार के लिए निर्धारित संत योहन रचित सुसमाचार से लिए गए पाठ पर चिंतन करते हुए संत पापा ने इस बात को रेखांकित किया कि जो लोग यीशु को मार डालना चाहते थे उनका गुस्सा शैतान द्वारा भड़काया गया था, क्योंकि हर विनाशकारी रोष के पीछे शैतान होता है। उन्होंने कहा कि रोष से भड़के क्रुद्ध व्यक्ति के साथ वाद विवाद नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में केवल मौन धारण ही उचित होता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने किया था। उन्होंने अपने लिए चुप रहने और दुख सहने को चुना। संत पापा ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जब इस महामारी के बारे में अनर्गल बकवाद किया जा रहा है, ऐसा ही करने की जरूरत है, मौन धारण की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के दुखभोग की याद करते हुए संत पापा ने कहा कि शैतान द्वारा भड़काए गए लोगों ने उन्हें मारने तक प्रताड़ित किया। इसी प्रकार आज भी कई देशों में केवल ख्रिस्तीय होने के कारण लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। संत पापा ने कुछ धर्माध्यक्षों के साथ अपनी मुलाकात का हवाला देकर कहा कि धर्माध्यक्षों ने उन्हें बताया कि पास्का के एक दिन बाद बच्चों से स्कूल में पूछा गया था कि उन्होंने पास्का पर्व पर क्या खाया, और बच्चों के यह बताने पर कि उन्होंने अंडे खाए थे, यह पता लगाया गया कि वे ख्रिस्तीय थे और उन्हें प्रताड़ित किया गया। संत पापा ने कहा कि जिस प्रकार शैतान प्रभु की परीक्षा लेने उन्हें उजाड़ प्रदेश ले गया था तथा लालच देकर उन्हें प्रलोभन में डालना चाहता था, उसी प्रकार स्कूली बच्चों को परीक्षा में डाला गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। संत पापा ने कहा, इसी को शैतानी कृत्य और कूट बुद्धि कहा जाता है। संत पापा ने कहा कि बुरी आत्मा के खिलाफ लड़ने का साहस पाने के लिए हम सब मिलकर प्रभु से विनती करें। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार 26 मार्च को कोविड महामारी से ग्रस्त रोगियों की मदद करने वाले अस्पतालों के लिए 30 श्वास यंत्र वैटिकन की प्रेरितिक भिक्षादान समिति के सिपुर्द किए हैं। शुक्रवार को वैटिकन के प्रेस कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया कि संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन की प्रेरितिक भिक्षादान समिति के माध्यम से कोविड महामारी से लड़ रहे अस्पतालों की सहायता के लिए 30 श्वास यंत्र अर्पित किए हैं। ये श्वास यंत्र उन क्षेत्रों के अस्पतालों को दिए जाएंगे जो इस समय कोविड महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। यह भी कहा गया कि इस विषय में आगामी दिनों में विस्तृत सूचना प्रदान की जाएगी। विश्व भर में फैलते कोविड-19 महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि में वैटिकन की सामाजिक विज्ञान संबंधी परम धर्म पीठीय समिति ने एक वक्तव्य जारी कर प्रारंभिक कार्रवाइयों और शुरुआती प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने तथा सभी राष्ट्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की अनिवार्यता पर बल दिया। गुरुवार को प्रकाशित वक्तव्य में वैटिकन की उक्त समिति ने इस आपातकालीन स्थिति में कार्यरत चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के कठिन श्रम की सराहना की, किंतु कहा कि भविष्य में हमें राजनैतिक और स्वास्थ्य देखभाल दोनों मोर्चों पर बेहतर समन्वय और तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है। इस महामारी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के प्रति परम धर्म पीठीय समिति ने हार्दिक संवेदना व्यक्त की तथा स्थिति के बेहतर होने की मंगल कामना की। इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हुए कि कुछ माहों पूर्व विश्व को इस महामारी की चेतावनी दी गई थी, किंतु इसके बावजूद इस चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, समिति ने कहा कि इस गंभीर स्थिति से पाठ सीखा जाना चाहिए तथा भविष्य में पारदर्शिता, समन्वय और एकजुटता के साथ कठिन स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहा जाना चाहिए। फैलती महामारी पर रोक लगाने का आह्वान करते हुए समिति ने कहा कि हम इस बात पर बल देते हैं कि इस महामारी के निरंतर प्रसार से निपटने के लिए हर देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। बड़े पैमाने पर परीक्षण की आवश्यकता को मान्यता दी जानी चाहिए। जो लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त पाए गए हैं उन्हें उपयुक्त उपचार प्रदान किया जाना चाहिए तथा उनके निकट संपर्क में रहने वालों को अलगाव की हर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। समिति ने इस बात पर गहन खेद व्यक्त किया कि सरकारें, सार्वजनिक संस्थान, वैज्ञानिक समुदाय और सामाजिक संप्रेषण माध्यम सहित मीडिया जिम्मेदार, पारदर्शी और समय पर चेतावनी एवं समाचार सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं, जो उचित कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।